बीबीसी इंडिया बोल 19 अक्टूबर दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। सावरकर को बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में भारत रत्न दिलाने का वादा किया। सावरकर हीरो या विलन? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए सावरकर के नाम पर विवाद क्यों? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001 पर। बतौर मेहमान चर्चा में शरीक होंगे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। इस समय ब्रितानी संसद में ब्रेक्जिट डील को सहमति देने पर निर्णायक चर्चा चल रही है। इसी बीच सेंट्रल लंदन में बड़ी संख्या में लोग ब्रेक्जिट पर एक और जनमत संग्रह करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 साल पहले ब्रेक्जिट पर हुए जनमत संग्रह में लगभग 52% लोगों ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के पक्ष में मतदान किया था। अब प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इससे पहले कि संसद कोई फैसला ले, लोगों को अपनी बात फिर से कहने का मौका मिलना चाहिए। इस प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने कहा,
I'm ashamed of the UK at the moment, so I'm here to support this because what's going on in the UK just.
मैं शर्मिंदा हूँ, मैं यूके पर इस समय शर्म महसूस कर रही हूँ, इसीलिए इस रैली में समर्थन देने के लिए शामिल हुई हूँ। ब्रिटेन में जो भी चल रहा है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और युवाओं को भी। ये थे ब्रेक्जिट को लेकर फिर से जनमत संग्रह करवाने की मांग कर रही एक प्रदर्शनकारी के शब्द। उत्तर पूर्व सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों ने तुर्की पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कुर्दों का कहना है कि रस अल आयन कस्बे से आम नागरिकों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित गलियारा बनाया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुर्दों का दावा है कि फिर से छिड़े संघर्ष के कारण घायलों को सुरक्षित निकालने में भी मुश्किल हो रही है। उधर तुर्की ने भी कुर्दों पर 1 दर्जन से अधिक बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कैटालोनिया के प्रशासन के प्रमुख कीम तोर्रा ने स्पेन की केंद्रीय सरकार से वार्ता की पेशकश की है। 5 दिन पहले स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने तोर्रा के सहयोगी अलगाववादी नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी। तोर्रा ने कहा कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का हल नहीं तलाश सकती। शुक्रवार को अदालत के फैसले के विरोध में बार्सिलोना में हिंसा देखने को मिली थी। लेबनान में हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच हिजबुल्ला के लेबनानी धड़े ने कहा है कि देश के राजनेताओं को देश की आर्थिक समस्याओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देश में गुरुवार और शुक्रवार को हुए प्रदर्शनों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। लोग बढ़ती हुई कीमतों और बेरोजगारी से नाराज हैं। हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह ने कहा,
लेकिन كلنا يجب ان نتحمل المسؤوليه وان نقبل المسؤوليه وان نقبل المسؤوليه।
हम सभी को जिम्मेदारी न सिर्फ स्वीकार करनी चाहिए बल्कि उठानी भी चाहिए। ये शर्म की बात है कि लेबनान में पैदा हुए हालात से कुछ लोग बचना चाह रहे हैं, खासकर वो लोग जो 30 साल तक पिछली सरकारों में रहे हैं, फिर वो कोई भी हों। ये थे लेबनानी हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। साइबेरिया में सोने की एक खदान में काम करने वाले 15 खनिकों की एक बांध टूट जाने के कारण मौत हो गई। ये घटना रूस के क्रास्नोयारस्क शहर में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 4 मीटर ऊंची पानी की एक दीवार सी आई और अपने साथ उन ढांचों को बहा कर ले गई जहां पर ये खनिक रह रहे थे। 13 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार का कहना है कि भारी बारिश के कारण बांध की दीवार कमजोर हो गई थी। माली की सेना ने 50 इस्लामी चरमपंथियों को मारने और इनके चंगुल से कुछ सैनिकों को छुड़ाने का दावा किया है जो पिछले महीने बंधक बना लिए गए थे। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 60 लापता सैनिकों में से 36 को रिहा करवा लिया गया है। अभी तक इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। माली की सेना इलाके में बढ़ती हिंसा को रोक पाने में असमर्थ दिख रही है, जिससे पश्चिमी अफ्रीका के अन्य देशों में भी चिंता पैदा हो गई है। दक्षिणी सूडान के पूर्व विद्रोही नेता राइक माशर अगले महीने बनने वाली राष्ट्रीय सरकार के गठन पर वार्ता के लिए राजधानी जूबा पहुंचे हैं। पिछले साल राष्ट्रपति साल्वा कीर और उनके उपराष्ट्रपति रहे बागी नेता राइक माशर के बीच समझौता हुआ था, मगर उसके बाद से कोई प्रगति नहीं हुई थी। पिछले हफ्ते अमरीका ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने 1 महीने के अंदर मिलजुल कर सरकार नहीं बनाई तो दक्षिण सूडान के नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। सावरकर को बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में भारत रत्न दिलाने का वादा किया। सावरकर हीरो या विलेन? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए सावरकर के नाम पर विवाद क्यों? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं, 1811-7000 और 1811-2-7001। बतौर मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय। स्वागत है सर आपका।
नमस्कार।
स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर एक बार फिर चर्चा में है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें सावरकर को भारत रत्न दिलाने का वादा किया है। सुनाते हैं कि इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा।
हमने ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने इसकी अनुशंसा की है, हम केंद्र सरकार के पास जाकर इसका फॉलो महाराष्ट्र सरकार करेगी और मुझे विश्वास है हम अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। इस संकल्प पत्र में हमने उसका समावेश किया है।
ये थे देवेंद्र फडणवीस। सावरकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं रहे, लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा और देश के लिए उनके योगदान का जिक्र हमेशा करते हैं। इतिहास में सावरकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज हैं जिनके नाम के साथ कई विवाद जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा रहा होगा कि जब ये मांग उठेगी तो विवाद का जिक्र भी होगा और इसके मुकाबले की तैयारी भी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में सावरकर का जिक्र किया।
ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। भाइयों और बहनों, वहीं दूसरी तरफ कौन है? ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर को आए दिन गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सावरकर के योगदान की चर्चा की।
वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देख। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया।
मौका चुनाव का है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आनी थी। कांग्रेस ने पहले भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठाए, फिर ये पार्टी अपना स्वर बदलती दिखी। पार्टी की ओर से मोर्चा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाला।
As far as Savarkar ji is concerned, you would recall that Indira Gandhi had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for.
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सावरकर पर डाक टिकट जारी किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को दरअसल सावरकर नहीं बल्कि हिंदुत्व की उनकी विचारधारा से दिक्कत है। हिंदुत्व पर सावरकर ने अंडमान की सेलुलर जेल से बाहर आने के बाद किताब लिखी थी। अंडमान में वो करीब 10 साल रहे थे। तो सावरकर हीरो या विलन, और भारत रत्न के लिए उनका नाम बढ़ाने पर विवाद क्यों? ये सवाल हम रखेंगे नीलांजन जी के सामने, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताइए। जी नमस्कार।
नमस्कार सर, मैं पुंसद महाराष्ट्र से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ सर।
जी अरुण जी।
हाँ जी, सावरकर को 25-25 साल की दो सजाएं दी थी सर उनको।
जी।
और उनको सेलुलर जेल में रखा था अंडमान में।
जी।
और उनको 5x2 मीटर की कोठरी में नंबर 52 अंडमान में ऐसी यातनाएं दी गई थी, इतनी बोले तो बहुत अलग तरह से। और जो सरकारी अफसर थे वहाँ के, उनकी बग्घियों को इनके खिंचाया जाता था।
जी, तो हम जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये विवाद क्यों हो रहा है और क्या?
जी, ये इनका मुद्दा था हिंदुत्ववादी, जैसे हिंदू राष्ट्र हो अपना भारत, इसकी वजह से ये थे जरा सा,
इसलिए ये विवाद में रहे हैं। मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा नीलांजन जी, चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहूंगा। जैसा ये इनके योगदान का जिक्र कर रहे थे, तमाम लोग इस समय जितने भी नेता हैं, खासतौर पर जिन लोगों ने ये मांग उठाई है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी पहले ये मांग उठा रही थी, वो योगदान का लगातार जिक्र कर रहे हैं। तो सीधा सवाल एक ये भी इस समय पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लग सकती, नहीं तस्वीर लग सकती है, संसद भवन में उनकी तस्वीर लग सकती है,
तो संसद भवन में तो लगी हुई है,
लग सकती है, लगी हुई है, जहां उनको लगातार श्रद्धांजलि भी नेता देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं। तो भारत रत्न अगर ऐसे व्यक्ति को मिलता है जहां संसद में उनकी तस्वीर है, तो क्या दिक्कत है, क्यों?
देखिए, सबसे पहले तो एक पत्रकार और एक लेखक के तौर पे हमें इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, ना हम किसी भी नेता का राजनीतिक तौर पे आदर करते हैं, ना किसी का अपमान करते हैं। हमारा काम है उसका अध्ययन करना।
जी,
सबसे पहली बात तो ये है। जहाँ तक भारत रत्न सावरकर को देने की बात है, 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब एक कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, उस समय राष्ट्रपति को के आर नारायणन थे, उनको सिफारिश भी की गई थी, लेकिन के आर नारायणन ने उस फाइल पे कोई आगे कदम नहीं उठाया। वाजपेयी जी का बड़प्पन था कि उस मामले को राष्ट्रपति के साथ फर्दर परस्यू नहीं किया, उसको नेचुरली डाई डाउन करने की कोशिश किया।
6 साल का कार्यकाल था, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया,
बिल्कुल दिया गया था, बिस्मिल्ला खां को दिया गया था, लता मंगेशकर को भी दिया गया था। तो बात यह उठता है कि ये अभी उठाया गया है, और सवाल यह है कि महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा
जी?
हमको देखना पड़ेगा कि भारत जैसे देश में अलग अलग जो रीजन्स हैं, वहां पे उनके महान नेता होते हैं, महान ग्रेट्स होते हैं, उनकी लिस्ट होती है। तो जहां तक महाराष्ट्र की बात है, छत्रपति शिवाजी के बाद मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे वीर सावरकर का नाम आता है। वो एक तरह से वो महाराष्ट्र से ही किसी कॉलर ने फ़ोन किया, और वो बहुत लंबे समय तक बताते रहे कि उनको 25-25 साल के दो, मतलब एक तरह से
तिलक
उनको
की
एक,
बात भी की जाती
उनको,
है,
उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। मेरे ख्याल से सावरकर
जो गणपति पूजा होती है, जिस तरह से उसका इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल से वो तो घर घर में है।
और ये जब तो मामला का डिबेट में है कि मतलब सावरकर नंबर 2 पे हैं या तिलक नंबर 2 पे है, लेकिन खैर ये मैटर डिबेटेबल है। सवाल ये है कि लोग ये भी भूल जाते हैं कि 1924 के बाद जब वो 13 साल और 1937 तक रत्नागिरी में के जेल में, और उसके बाद में रत्नागिरी शहर में, जिले में एक तरह से इंटर्न होके रहे, कि जहां वो फ्री रह सकते थे, अपने परिवार के साथ रह सकते थे, लेकिन जिला के बाहर नहीं जा सकते थे, और अगर जाना होता था तो उनको परमिशन लेके जाने पड़ती थी, और राजनीति में किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे। उस समय उनको ब्रिटिश सरकार से बकायदा एक तरह से पेंशन मिलती थी
जी, 60 रुपए।
तो हाँ, 60 रुपए मिलती थी, जो उस समय के 60 रुपए आज के 60 रुपए नहीं है
जी,
वो काफी बड़ी रकम थी। तो सवाल यह है कि 100 साल करीब हो गए हैं सावरकर जी विवादों के केंद्र में रहे हैं, और उसके पीछे मेन कारण उनका जो रेवोल्यूशनरी जिंदगी थी। मैं उनकी जिंदगी को उन पर जो अध्ययन किया हूँ अपने किताब में, उन पर एक चैप्टर है, उसमें मैंने ये लिखा है कि उनकी जिंदगी के 3 फेजेस थे। एक उनके जन्म से लेकर 1911 तक, जब तक वो अंडमान नहीं भेजे जाते हैं काला पानी में, उसके बाद 1911 से लेकर 1937 जब उनके अलग अलग किस्म के प्रिजन टर्म्स रहे, या तो वो अंडमान में रहे, या फिर उसके बाद पुणे के यरवादा जेल में रहे, उसके बाद रत्नागिरी में रहे थोड़े दिनों जेल में, और 1937 तक जब वो फ्री परिवार के साथ रहते थे लेकिन एक्टिविटी में किसी तरह से नहीं कर सकते थे। तीसरा फेज शुरू होता है उनको 1937 से, जब वो पूरी तरह से एक राजनीतिक जिंदगी में उतर आते हैं और हिंदू महासभा की बागडोर संभालते हैं, और उसको एक प्रमुख राजनीतिक संगठन बनाने की
कोशिश
करते हैं, लेकिन
उसमें हम लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप?
गुजरात से बोल रहा हूँ, जामनगर जिला के पास छोटा सा गांव है आमरण
जी।
50 साल से आपको सुन रहा हूँ, शुक्रिया आपका,
बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम भी बता दीजिए, आप हमारे इतने पुराने श्रोता
हैं। मेरा नाम परमार है
जी, परमार साहब।
बार आपसे मुखातिब हुआ हूँ
जी। जी परमार साहब, अपनी बात रखिए, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है?
ये एसिड टेस्ट हो रहा है
जी, एसिड टेस्ट हो रहा है।
सरकार में थी, एक बार प्रस्ताव ठुकरा दिया था नारायण साहब ने
जी,
और गांधी के मर्डर में सावरकर को खिलाफ केस चला था, छूट जरूर गए थे, लेकिन कपूर कमीशन ने शक तो जरूर किया था सर,
शक की सुई थी आपका ये कहना। एक और श्रोता हमारे साथ है, परमार साहब।
को पुणे की फर्ग्यूसन कॉलेज के निकाला दिया गया था
जी,
नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था लंदन में। सावरकर ने लंदन अपने माफीनामा लिखा था सेलोर से जेल से, 60 रुपया पेंशन मिलता था। और सर सावरकर ने सेलोर से जेल में माफीनामा लिखा, सर मैं मानता हूँ संसद की गरिमा, संविधान, लोकतंत्र की वगैरह की गरिमा गिर रही है, मेडल की भी गरिमा गिर रही है।
जी ये आपकी अपनी राय है कि उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। एक और श्रोता हमारे साथ हैं परमार साहब, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और।
हेलो मैं मोहन सिंह काजला बोल रहा हूँ, काजला ही डाणी पंचायत अजारी किला राजस्थान से।
जी नमस्कार, अपनी बात रखिए इस मुद्दे पर, आप क्या कहेंगे?
मेरा कहने का मतलब आज जो हम जो कश्मीर और जम्मू के अंदर मतलब है और हमारे देश में ये एरिया है, तो ये वीर सावरकर की मतलब करामात थी जो आज कश्मीर और जम्मू मतलब भारत के अंदर है। वो कैसे क्या सरदार पटेल को थोड़ा पता चल गया
परमार साहब, ये इतिहास तो, को एक अलग रुख दे रहे हैं शायद
ये,
वो
ये तो जाने वाला है। तो बाद में सरदार पटेल जी ने भेजा महाराजा हरि सिंह जी के पास, तो उसको कैसे भी मना मुनुकिन है, हरि सिंह जी दस्तखत कर गए भाई हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, वो चले गए तुर्की। एक काम तो ये किया बहुत बड़ा।
तो ये अब सवाल हम रखते हैं, हमारे साथ नीलांजन जी हैं जिन्होंने सावरकर को लेकर, उनके जीवन को लेकर बड़ा अध्ययन किया है। मैं बात करना चाहूंगा जो हमारे पहले कॉलर थे परमार साहब, उन्होंने एक तरीके से बातें रखी जो उनके बारे में प्रचलित हैं और एक इतिहासकार के तौर पर, लेखक के तौर पर आप भी इसको जानते हैं। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी की जयंती का जन्म का 150वां साल है, उसी वक्त सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई जाती है, ये कुछ विरोधाभासी लगता है? क्योंकि भले ही वो आरोप से बरी हो गए हों, लेकिन जो दोनों की विचारधाराएं थी वो बहुत जमीन आसमान का एक अंतर था।
पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में
जी
सावरकर की जो पोर्ट्रेट लगी हुई है
जी,
वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लगाई
जी,
गई है
जी।
अगर आपको उनको श्रद्धांजलि देनी है तो आपको गांधी जी को पीठ करना पड़ेगा।
तो यानी
मेरे ख्याल से ये जो सिंबॉलिक जो चीज को मैं दोहरा रहा हूँ, इससे समझ में आ जाएगा, अगर आपको सावरकर को भारत रत्न देना है उसका मतलब है कि आप
एक तरह से
महात्मा गांधी की लेगेसी को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। आप गांधी और सावरकर या सावरकर गांधी या गोडसे, इन दोनों की फिलोसफीज को साथ नहीं रख सकते, एक मयान में ये दोनों तलवारें नहीं रह सकती।
जब ये बात की जाती है, क्योंकि 2 अक्टूबर अभी बीते हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और जो आपने बात की कि इस वक्त क्यों सावरकर का नाम महाराष्ट्र चुनाव में आया, आपने उसका रीजन भी बताया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, लेखक और इतिहासकार के साथ। भारतीय जनता पार्टी को जो चुनावपूर्ण सर्वेक्षण आ रहे हैं वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर महाराष्ट्र में बता रहे हैं, अगर सर्वेक्षण सही होते हैं तो ऐसे दौर में क्या भारतीय जनता पार्टी को सावरकर का नाम आगे करने की जरूरत थी? क्योंकि बहुत से लोग इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं और शायद आपने जो इशारा किया वो भी इसी तरफ था।
देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर आप मई 2019 के बाद से जब दोबारा सरकार बनाए तब आप देखें, तो उनका इस बार थ्रस्ट जो है मूलतः अपनी आइडियोलॉजिकल जो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले थे उनको लेके है। ट्रिपल तलाक वो कानून पास करा दिया गया, आर्टिकल 370 उसको रद्द करने की बात थी, बहुत सदियों से इनकी मांग थी उसको उन्होंने कर दिया है। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो हमको दिख रहा है कि पॉलिटिकल ग्राफ जो है बीजेपी का बिल्कुल लगातार ऊपर को चढ़ जा रहा है
जी।
दूसरी तरफ जो मेन जो खतरा है बीजेपी को वो है आर्थिक मुद्दों पर, कि ग्रोथ नहीं हो रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करना पड़ा है। तो ये विरोधाभास को ताकि ये मैच करके मतलब जो पॉलिटिकल जो ग्राफ ऊपर चढ़ा है इसको ना नीचे खींचे, इसलिए लगातार जरूरी है बीजेपी के लिए कि लगातार हर कुछ समय में एक पॉलिटिकल गोल सामने रखा जाए। तो अभी आर्टिकल 370 के बाद अगला गोल रख दिया जाए कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, तो इसमें एक तरह से एक्साइटमेंट पैदा होगा।
अपील ऐसी होगी
मेरे ख्याल से सावरकर की अपील जो है मूलतः जो अपील है वो उनका अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई की वजह से नहीं है, लेकिन उनके हिंदुत्व की राजनीति के पंडित होने का
किया जी। मैं लौटूंगा इस सवाल पर, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीलांजन जी, उनकी बात भी सुन लेते हैं क्योंकि श्रोताओं का मंच है ये इंडिया बोल जी। जी नमस्कार,
जम्मू से बोल रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट पूंछ 6 साल मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ सर।
जी मोहम्मद शफी साहब क्या कहेंगे आप?
सर बात यह है कि गांधी को छोड़कर अगर भारत रत्न किसी दूसरे को दिया जाए, आप ये इंसाफ की बात है या कि गैर इंसाफ की बात है? एक बात यह है, हम किसी के विरोध या किसी के खिलाफ नहीं काम कहना चाहते, क्योंकि देश की आजादी जो में थे सब लोग थे। लेकिन जहां तक गांधी जी का सवाल पैदा होता है और दूसरों का सवाल पैदा होता है, ये जो है अन्याय है
जी। ये आपको लगता है कि अन्याय है? शफी साहब एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, कहां से आप बोल रहे हैं ये भी बताइए।
जी नमस्कार।
जी नमस्कार सर,
डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ, सरकी दादरी हरियाणा से।
जी विनोद जी स्वागत है आपका।
ये सर दोनों पार्टियां बीजेपी और विपक्ष दोनों विशुद्ध रूप से राजनीति कर रही है इस मामले में
जी।
अगर बीजेपी को कुछ करना ही है तो इतने साल से इनका राज है तो ये भारत रत्न पहले भी दे सकते थे
जी।
अब इनको अपने संकल्प पत्र में ये शामिल करने की क्या जरूरत थी
जी। टाइमिंग पर विनोद जी सवाल उठा रहे हैं, नीलांजन जी और जो इन्होंने बात कहा विपक्ष और पक्ष दोनों तो इसमें
एक बात और कहना चाहूंगा मैं
जी। विनोद जी
लोग बातें करते हैं सावरकर जी की कुर्बानी के बारे में, उन्होंने जो शहादत दी है देश के लिए, जो लोग इवन कायम चूर्ण लेके हल्के होते हैं वो लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो बड़ा दुख होता है
जी। मैं चाहूंगा कि आप एक सही भाषा का अगर इस्तेमाल यहाँ करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। विनोद जी धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। सावरकर आज दुनिया में नहीं है और करीब 53 साल हो गए, 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन राजनीति में एक मुद्दा बन जाते हैं, जैसा विनोद जी भी कह रहे हैं और आपने भी कहा पिछली बार वो जब चर्चा में आए थे राजस्थान में, जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उन्होंने 12वीं क्लास की जो पाठ्य पुस्तक की किताबें थी उसमें से वीर शब्द हटा दिया था
जी।
जिसका जिक्र कई लोगों ने किया, हमारे शुरुआती श्रोता जो परमार साहब थे उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांगी थी। तो आपको क्या लगता है कि जो आप कह रहे थे कि मूल मुद्दे इतने बड़े हैं सरकारों के पास उनका जवाब नहीं है, इसीलिए 1966 में जिनकी मृत्यु हो चुकी है 53 साल बाद भी उनको बार बार जिंदा करने की कोशिश होती है?
मेरे ख्याल से बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है उसको सस्टेन करके रखने के लिए, उसको और फर्दर आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सावरकर का डेइफिकेशन को किया, मतलब बरकरार रखा जाए, उसको आगे और बढ़ाया जाए, उनको एक नेशनल आइकन की तरह पेश किया जाए। उसके पीछे बहुत कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो संघ परिवार के जो तमाम संगठन है वो आज़ादी की लड़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। उनके किसी भी जो की मोमेंट्स थे, चाहे वो 1920 के जो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट था या फिर सिविल डिसोबीडियंस था 1930-31 उस पीरियड में, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, इन तीनों चीज़ों में उनका कोई योगदान नहीं था।
अंडमान से बाहर आए थे सावरकर जी तो उनके योगदान का भी कोई जिक्र नहीं मिलता।
संघ परिवार के अंदर से कोई उनके अपने कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पे आइकॉनिक लीडर नहीं है, इसलिए सावरकर की वीरता पे स्ट्रेस देनी है, जबकि सावरकर को ऑनर इसलिए किया जाना चाहते हैं ये लोग क्योंकि वो हिंदुत्व को कोडिफाई किए थे। हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल करने वाले सावरकर कोई सबसे पहले इंसान नहीं थे, लेकिन उसको पॉलिटिकली कोडिफाई करना कि वो आइडिया क्या है, ये बताना कि हिंदू एक तरह से राष्ट्र है
जी।
यू नो जो हिंदू लोग हैं इस देश में, जो तमाम लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, इस पूरे जो चीज आइडिया है इसको सामने रखने में उसमें सावरकर का बहुत बड़ा योगदान है।
तो इसलिए उनको याद किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? इस बीच एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलांजन जी उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी जी
सर
नमस्कार।
मैं अभी सुन रहा था सर को, तो वो बोल रहे थे कि सावरकर जी पहले वैसे आदमी नहीं थे जो हिंदू को संरक्षण
जी। पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए।
मेरा नाम अमरनाथ हुआ, मैं बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ
जी। अमरनाथ जी आप सीधा सवाल कर सकते हैं, नीलांजन जी आपको सुन रहे हैं।
सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज का जो मुद्दा है जो देश में चल रहा है उसको भटका करके एक तरह का अजीबो गरीब ये देश में थोपा जा रहा है हर इंसान पे, क्योंकि जो मेन मुद्दा है उससे भटका करके। सावरकर जी कौन थे भाई? हिंदू सावरकर जी से पहले भी थे और ये जो गोडसे जी हैं
जी। सवाल क्या है अमरनाथ जी, आप सवाल क्या सवाल पूछिए।
मतलब मेरा सवाल यही है कि इनको मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन हिंदू के वजह से जो ये जो गोडसे जो चिल्लाते हैं, इनसे पहले भी तो हिंदू राष्ट्र था और इन बीजेपी चला जाएगा, इसके बाद भी तो बीजेपी मतलब हिंदू रहेगा, तो फिर ये हिंदू का नाम लेकर के सब अच्छा
जी। बहस जो ये कहना चाह रहे हैं
संक्षेप में
आप इनका सवाल समझ गए।
बात हिंदू या गैर हिंदू की नहीं है, बात ये है कि क्या आप हिंदू कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे देखते हैं
जी,
और उसको किसी खास पार्टी अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, उसको एनलिस्ट करना चाहती है अपने सपोर्ट में।
जी, हमें सोशल मीडिया पर भी नीलांजन जी बहुत सारे कमेंट मिले हैं। फेसबुक पर आई कुछ टिप्पणियों को मैं पढ़ देता हूँ। मनोज कुमार लिखते हैं कि सावरकर ने काले पानी की सजा भुगती, उन्होंने देश की बहुत सेवा की, जैसा बहुत सारे उनके समर्थक कहते हैं। राज अग्रवाल का कहना है कि माना जा सकता है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन ये मांग चुनाव के वक्त ही क्यों की जा रही है, जिसका आप जवाब दे चुके हैं, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। सलीम की राय है कि अंग्रेजों से बचने के लिए किसने माफी मांगी थी, ऐसे लोगों को सम्मान देना उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नलिन सिंह ने लिखा है क्रांतिकारियों से मिलने के लिए माफी नामा देना जरूरी था, जेल के बाहर आकर उन क्रांतिकारियों को जगाया जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। यानी राय बटी हुई है, इसी में सवाल भी है और जवाब भी है। और ये सवाल सबसे बड़ा जिसका सीधे तौर पर उत्तर सामने नहीं आ पा रहा है, जो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और क्या ये विवाद का विषय बनना चाहिए, या ये आम राय होनी चाहिए।
देखिए, जहां तक क्या उनको भारत रत्न मिलनी चाहिए
या किसी को भी जो भारत रत्न मिले, तो क्या विवाद इस तरह का हो उसके बाद भारत रत्न मिलना, क्योंकि वो व्यक्ति इस पुरस्कार को लेने के लिए, सम्मान को लेने के लिए जीवित नहीं है।
मेरे ख्याल से देखिए 1954 से भारत रत्न देने की जो प्रथा है उसको शुरू की गई थी।
48 लोगों को
पिछले पिछले दो दशक से कई बार ऐसे आए हैं, मौके आए हैं कि जिसमें बहुत बड़ा विवाद रहा है, और ये उस समय का जो सत्ता पक्ष है वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तौर पे यूज करती है
जी।
तो मेरे ख्याल से सेंसिबल लोग जो हैं भारत के, उनकी ये मांग होनी चाहिए कि भारत रत्न के जो जिनको अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को हटा दिया जाए जो किसी भी तरह से राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं
जी,
जुड़े हुए हैं
जी,
या रहे हैं।
तो ये
तो मेरे ख्याल से
बननी चाहिए।
पिछले जो हो गया सो गलत, मतलब बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम गलत ट्रेडिशंस को दोहरा बढ़ाएं।
जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। नीलांजन जी, जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हेलो
जी, आप जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, आप अपना नाम?
मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आलोक यादव बोल रहा हूँ।
जी यादव जी, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है।
मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो ये सारी बातें जो होती है सर, एक विरोधाभास झलकता है इसमें
जी।
गांधी जी को एक यहाँ राष्ट्रपति का दर्जा देते हैं
जी,
वही और सावरकर को एक
भारत रत्न देने की बात है, इनको एक विरोधाभास नजर आ रहा है जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एक बात और यहाँ पर इतिहास से जुड़ी हुई है, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब वो भले ही महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से सावरकर बरी हो गए, लेकिन जब तक वो जीवित रहे ये बताया जाता है कि वो हाशिए पर ही रहे, मुख्य धारा में नहीं
थे। तो
अब ये क्या
कपूर कमीशन की रिपोर्ट को किसने रद्द नहीं किए और उसमें ये कहा गया था,
कोशिश उनको मुख्य धारा में स्थापित करने की लगती है?
मेरे ख्याल से कोशिश तो है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा अगर इनको पूरी तरह से एक नेशनल आइकन के तौर पे अगर एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि अभी भी गांधी हत्याकांड में जो जीवनलाल कपूर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें साफ ही कहा गया था कि उनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से उनको मानने में बहुत दिक्कत थी कि सावरकर या उनके दोस्तों को या उनके साथियों को कोई जानकारी नहीं थी कि गांधी की हत्या की प्लानिंग की जा रही है
जी। तो ये उनके पास जानकारी नहीं थी। वक्त नीलांजन जी हमारे पास इतना ही है, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे माफी। और चलते चलते एक बार फिर मुख्य समाचार आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। ब्रितानी सांसदों ने ब्रेग्जिट डील को टालने के पक्ष में मतदान किया है। 306 के मुकाबले 322 मतों से सांसदों ने सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव को खारिज किया। अब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आज ही यूरोपीय संघ से ब्रेग्जिट टालने की गुजारिश करनी होगी। उत्तर पूर्व सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों ने तुर्की पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कैटलोनिया के प्रशासन के प्रमुख कीम तोर्रा ने स्पेन की केंद्रीय सरकार से वार्ता की पेशकश की है। 5 दिन पहले ही स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने तोर्रा के सहयोगी अलगाववादी नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी। लेबनान में हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच हिजबुल्ला के लेबनानी धड़े ने कहा है कि देश के राजनेताओं को देश की आर्थिक समस्याओं और इन प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साइबेरिया में सोने की एक खदान में काम कर रहे 15 खनिकों की एक बांध टूट जाने के कारण मौत हो गई। माली की सेना ने 50 इस्लामी चरमपंथियों को मारने और इनके चंगुल से कुछ सैनिकों को छुड़ाने का दावा किया है। दक्षिण सूडान के पूर्व विद्रोही नेता राइक माशर अगले महीने बनने वाली राष्ट्रीय सरकार के गठन पर वार्ता के लिए राजधानी जुबा पहुंचे हैं। बीबीसी समाचार।
इस सभा में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक देश और दुनिया की प्रमुख खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं bbchindi.com के साथ। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।